मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन मुश्किल ये है कि दूसरी भी खबरें मेरे पास हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना समय उसके लिए बच पाता है। एक जो महत्वपूर्ण खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर इसे मैं कहूंगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, वो ये है फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार ने बाकायदे बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है, दिशा निर्देश दिए हैं राज्यों को, और ये निर्देश उन बच्चों के लिए हैं जो कोरोना के पीरियड में बेसहारा हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, कि इन बच्चों की कैसे देखभाल की जाए। देखिए, अब ये तो राज्यों का विषय है, राज्य ही कर सकेंगे, तो केंद्र ने अपनी ओर से कुछ गाइडलाइंस दी हैं। इस गाइडलाइंस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसे आप कहते हैं, यूपी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं, हरियाणा हिमाचल में चले जाइए, पंजाब में तो उन्हें डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कलेक्टर कहते हैं, कहीं जिलाधिकारी कहते हैं, कहीं जिलाधीश कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो जो कलेक्टर होंगे, जो सबसे पॉपुलर नाम है, वो इनके अभिभावक होंगे, या यूं कह लीजिए कि संरक्षक होंगे, यानी कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वो कलेक्टर की होगी। जो पुलिस डिपार्टमेंट होगा डेफिनेटली वह उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा, और जो दूसरी एजेंसीज हैं वह इन सब में मदद करेगी। इसमें बकायदे ये व्यवस्था की गई है कि इस बात को इंश्योर कीजिए कि जो बच्चे की पैतृक संपत्ति है कहीं उसे बेच न दिया जाए, कि पर उसके परिवार के लोग पता लगा कि अब चूंकि बच्चा तो बच्चा है, वो बेचारा कुछ समझ नहीं रहा है, तो उसे बेच दिया जाए, उसके साथ और कोई अन्याय कर दिया जाए, तो कलेक्टर इंश्योर करें कि बच्चे की संपत्ति पर न तो किसी का अवैध कब्जा होने पाए और न ही वह बेची जाए। और यहां तक कि सरकार जो बच्चे को धन देगी पढ़ाई करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और जो दूसरी मदद देगी, उसका उपयोग जो बच्चे के पिता है, मान लीजिए उन्होंने कुछ कर्ज ले रखा था, तो उस कर्ज के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता, वो बच्चे की शिक्षा स्वास्थ्य जिस पर्पज के लिए दिया गया है उसी पर्पज के लिए किया जाएगा। और फिर पुलिस देखेगी कि किस तरीके से वो देखे कि बच्चे का आर्थिक शोषण नहीं किया जा रहा है, उसे अपराध के कामों में नहीं लगाया जा रहा है, बाल मजदूरी नहीं हो रही है, बाल विवाह नहीं हो रहे हैं, तस्करी नहीं की जा रही है, इन सबको पुलिस विभाग इंश्योर करेगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं बच्चों के कल्याण की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें कृषि क्षेत्र के सिनेरियो के बारे में बताया गया है कि इस बार जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है वो पिछले साल से भी अधिक है, बावजूद कोरोना के संकट के हमारा जो एक्सपोर्ट है खाद्यान्न का, अनाज का, वो भी पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। और जो सबसे उसमें महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये है कि दालों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, दालों का उत्पादन, और लगभग लगभग ये महसूस किया जा रहा है कि शायद दालों के मामले में भारत अब बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, आपको मैं अखबारों के कुछ और भी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान से सुने। पहला तो यह कि इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि अभी राजद्रोह के मुकदमे बहुत ज्यादा दायर किए जाने लगे हैं, राजद्रोह। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है राजद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर दायर कर दिया जाता है। अभी हमारे एक जर्नलिस्ट थे, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया, कल उन्हें उससे मुक्ति दे दी गई, और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की अगर कोई आलोचना करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो राजद्रोही है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और सेडिटेशन को लेकर के, जिसे राजद्रोह कहते हैं हिंदी में, मैंने आपको इससे पहले कुछ एडिटोरियल कमेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं। हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं या जो सिविल सिटीजन्स हैं, वो खासकर जिस तरीके से राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, क्योंकि उसका सीधा संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। एक जर्नलिस्ट है, कुछ लिखता है, आप उसे राजद्रोह पर आरोप लगा देते हैं उस पर, अब आप बताइए कि फिर सरकार की आलोचना करना कैसे संभव होगा? तो सीधे सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। ठीक इसी तरीके से सरकार ने अभी एक और अमेंडमेंट किया है सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स में। उसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि जो भी अधिकारी बेसिकली इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करते हैं, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी का मतलब है जैसे IB, जिसे हम इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, आर एंड ए डब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, सेंट्रल सीबीआई के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो एजेंसीज हैं जिन्हें हम बेसिकली इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज कहते हैं, लगभग 25 ऐसी एजेंसीज हैं। इनसे अगर कोई रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद वह अपने काम के बारे में, विभाग के बारे में कोई भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी बात नहीं लिख सकता। यदि वो लिखना चाहता है तो उससे पहले वो बकायदे अपने डिपार्टमेंट से इसकी अनुमति ले, और अनुमति लेने के बाद ही वह कुछ लिख सकेगा। और यदि वह इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। सरकार ने अभी यह आदेश निकाला है, तो फिर से आप यहां देखिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले ऐसे बहुत से हमारे पास साहित्य, कह लीजिए कि पुस्तकें हैं, कि जिन्होंने इन एजेंसीज में काम किया है और उसके ऊपर बाद में आकर के लिखा है। और उससे सच पूछिए तो जो हमारा एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारा नॉलेज का जो ट्रेजरर खजाना है, वो रिच हुआ है। इसको लेकर के आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है, मैं वो एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें कुछ किताबों के नाम भी हैं, मैं चाहूँगा कि बेहतर होगा कि आप उन किताबों के नाम नोट कर लें, ये आपको मैं आंसर राइटिंग में काम आएंगे। लेटेस्ट उदाहरण अमेरिका का दिया गया है कि अमेरिका में एक व्यक्ति हुए हैं जॉन बॉल्टन, उन्होंने एक किताब लिखी द रूम वेयर इट हैपेंड। ये खासकर जो राष्ट्रपति ट्रंप रहे हैं, खास उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेशनल सिक्योरिटी की जो अप्रोच रही है उसके बारे में ये किताब है। हालांकि जब ये किताब आई तो ट्रंप ने सिर्फ इसके पब्लिकेशन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। तो आप देखिए कि अमेरिका उसे अलाउ कर रहा है, भारत उसे रोक रहा है। खासकर चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको मित्रों बताता आ रहा हूं कि जब भी इस तरह के टॉपिक पर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन में, तो जो आप उदाहरण दें, प्लीज लेटेस्ट उदाहरण दें। वही एग्जामिनर के सामने यह प्रमाण प्रस्तुत करता है कि नहीं, ये जो स्टूडेंट है ये बहुत अलर्ट है और बहुत इंटेलिजेंट है, और वही आपको मार्क्स दिला पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आइए बात करते हैं मुख्य विषय की। मैंने आपको प्रश्न नंबर 13 पर कुछ वर्क, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 पर कुछ होमवर्क दिया था, और मुझे खुशी है कि उस पर आप लोगों ने पूरे मन के साथ, मेहनत के साथ काम किया है। बहुत सारे मेल मिले हैं, उन सबके नाम ले पाना मेरे लिए संभव नहीं है, तो आप सबको सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा आप लोगों के उत्साह के लिए और मेहनत के लिए। कुछ ने तो बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, कुछ के आंसर अनुमान पर आधारित है जिसमें इकोनॉमिक्स की समझ की झलक नहीं मिलती। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन मैं सही तरीके से एनालिसिस इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि हो सकता है कि जिनके बहुत अच्छे आंसर हों उनकी बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स की हो, या इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड नहीं हो तो सिविल सर्विस के तहत उन्होंने इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर ली हो। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जिन्होंने अनुमान पर भी आधारित उत्तर दिए हैं वे भी प्रशंसा के पात्र हैं, इक्वली प्रशंसा के पात्र हैं। अब मैं ये जो चारों स्टेटमेंट हैं, इन स्टेटमेंट का कैसे चावल के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, बस इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मान लीजिए कि चावल, अभी धान की खरीदी हो रही है और धान की खरीदी 1500 रुपये प्रति क्विंटल है, ठीक है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटा लेगी, 1500 प्रति क्विंटल, 1500 रुपए प्रति क्विंटल सरकार फिक्स नहीं कर रही है। तो अब आप देखिए कि सीधी सी बात है कि धान का मूल्य कुछ भी हो सकता है, 1300, 1200, 1100 कुछ भी हो सकता है, 1700, 1800 भी हो सकता है, जिसकी संभावना नहीं होती है। लेकिन सरकार ने कह दिया कि 1500 रुपए प्रति क्विंटल है, और अगर बाजार में नहीं बिक रहा है तो हम खरीदेंगे। तो अब किसी भी प्राइवेट को अगर धान खरीदना है तो उसे 1500 रुपए तो देना ही देना पड़ेगा, हालांकि वो नहीं देना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि 1300 ही दे, लेकिन उसको मिलेगा ही नहीं, तो एमएसपी का सीधा प्रभाव पड़ेगा। सरकार द्वारा व्यापार करना, इसको लेकर के काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में थे कि भाई क्या सरकार व्यापार करती है क्या। देखिए, व्यापार लाभ हानि को व्यापार नहीं कहते हैं। अब सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो अनाज खरीद रही है वो व्यापार कर रही है, नहीं कर रही, खरीद रही तो व्यापार कर रही है, पर फिर चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ही उसे 2 रुपए किलो में क्यों ना बेच रही है, तो व्यापार कर रही है ना। तो सरकार अगर कोई भी खरीद करेगी और फिर उसे बेचेगी तो स्वाभाविक तौर पर सरकार तो बहुत बड़ी एजेंसी है, वो चीजों का निर्यात भी कर सकती है, आयात भी कर सकती है, ये भी व्यापार है। आपने देखा है कि जब कहीं भी देश में किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जैसे दालों के साथ बीच में हुआ था, प्याज के साथ होता है, तो सरकार एकदम इम्पोर्ट करने लगती है बाहर से, सामान मंगाने लगती है, तो वो भी व्यापार है। तो मान लीजिए कि प्याज की कीमत 50 रुपये चल रही है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, तो सरकार को लगता है कि अरे कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पता लगा उसने बाहर से प्याज इम्पोर्ट कर लिया, आयात कर लिया, प्याज की सप्लाई बढ़ गई, तो सीधी सी बात है कि अब प्याज की कीमत घट करके 25 रुपये रह गई। तो सरकार अगर व्यापार कर रही है और करती ही है, तो उसका सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकार द्वारा भंडारण करना, देखिए सरकार जब भंडारण करती है तो उसके दो तीन उद्देश्य होते हैं। पहला तो वो है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उसको जरूरत पड़ती है चीज़ों की, तो वहाँ वो दे देती है। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो यही काम करता है, अनाज खरीदता है, उसका भंडारण करता है और फिर जगह जगह भेजता है उसको। तो दोस्तों भंडारण करने पर, जैसे अभी मैंने कहा कि प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सरकार के पास चूंकि प्याज का भंडार नहीं है तो उसे आयात करना पड़ता है। अगर उसके पास अपना भंडार होता तो क्या करते, वो अपना भंडार खोल देती कि भैया ठीक है चलो 100 टन प्याज मार्केट में भेज दो। तो जैसे ही मार्केट में 100 टन प्याज चला जाएगा तो प्याज की जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो बढ़ जाएगी। यानी कि जो प्याज की डिमांड किसी वजह से बढ़ी थी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई आ जाएगी, और सप्लाई आ जाएगी तो कीमतों में स्थिरता आ जाएगी, स्थिरता नहीं आ जाएगी तो थोड़ी सी कीमतों पर कम हो जाएंगी थोड़ी सी। तो इसीलिए सरकार बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने लगी कि उसे भंडारण करना चाहिए, जैसे दालों के बारे में आया था, फिर सरकार ने फैसला भी किया कि नहीं हम दालों का भंडार करेंगे। इसके बाद उपभोक्ता सहायिका जिसे है सब्सिडीज, सब्सिडीज उपभोक्ता सब्सिडीज। अब आप देखिए कंज्यूमर सब्सिडीज क्या है, जैसे मान लीजिए कि यूरिया है, मैं मोटे तौर पर कह रहा हूं, यूरिया मान लीजिए कि 1000 रुपये क्विंटल है। अब जब किसान 1000 रुपये क्विंटल का यूरिया लेकर के अपने खेत में मान लीजिए कि उसका इस्तेमाल करता है, तो अब ये जो खाद उसने खरीद करके और खेत में डाला है, ये उसकी लागत में शामिल हो गया। अब वो चाहे गेहूं पैदा कर रहा है या धान पैदा कर रहा है, जो कुछ भी पैदा कर रहा है, उसमें शामिल कर लिया ना उसने कि 1000 रुपये का फर्टिलाइजर लगा है। सरकार ने कहा कि इसमें हम 500 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, तो 500 रुपये सब्सिडी दे दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि इसमें अब 500 रुपये की लागत कम हो गई। तो जब उसे उसकी जब उत्पादन लागत कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि मार्केट में उस चीज़ की कीमत भी कम हो जाएगी, तो किसान उसे बेच सकता है। और जो उपभोक्ता सहायिकियाँ हैं दोस्तों, वो सीधे सीधे आप उपभोक्ताओं को दे देते हैं सब्सिडी। अब आप देखिए कि 2 रुपये किलो गरीब लोगों को गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, इसमें तो सरकार सब्सिडी दे रही है ना, सीधे उपभोक्ता को सब्सिडी दे रही है। तो मार्केट में जब चीज़ों की कीमत का निर्धारण होगा तो स्वाभाविक तौर पर इस आधार पर होगा कि भैया इस पर सब्सिडी कितनी दी जा रही है, दूसरी जगह वो चीज़ कितने में मिल रही है। बस सिंपल तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि दूसरी जगह उस चीज़ की कीमत कितनी है। चलिए गेहूं और चावल में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। अदरवाइज जब भी सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी देगी तो सीधी सी बात है कि उस वस्तु के मूल्य के बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है। तो दोस्तों ये 4 कारण हैं जो खासकर चावलों के मूल्य को प्रभावित कर ही रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं उनके कारण मैंने आपको बताए हैं। अलग से इसको समझने की जरूरत नहीं होती है, जब मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक समझ लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी समझ लेते हैं, तो बड़े आराम से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है नोबेल धालीवाल, जो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। नोबेल आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करें। नमस्कार।